ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज फिर से हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं की चर्चा करेंगे। धीरे धीरे से अब चर्चा करते करते अब श्लोक संख्या 38 पर हम पहुंचे हैं। तो आज 38 और 49 ये हम दो श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। केवयं नाम रूपाभ्याम् यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनं यर्हि। ऋषिकाणाम् इवेशितुः द्वारा अनुवाद। जिस तरह है आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह है यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा कार्य तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करने की तैयारी में हैं, जबकि महारानी कुंती ने उनको रोक दिया है और श्री कृष्ण उनके रथ के ऊपर ही सवार हैं और कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि वो यहां से नहीं जाएं। और अब अपनी और अपने बच्चों की निस्सहाय अवस्था को व्यक्त कर रही हैं और वो कहती हैं कि जिस प्रकार शरीर की इंद्रियां आत्मा के शरीर छोड़ने पर बिल्कुल व्यर्थ हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, उसी प्रकार आपके यहां से चले जाने पर हम सब कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। हम तो जानते हैं कि इंद्रियां बहुत क्रियाशील होती हैं और जब हम जीवित होते हैं तो इंद्रियां बहुत कुछ करती हैं, बल्कि इंद्रियों के बजाय हम कुछ नहीं कर सकते। इंद्रियों की सहायता से ही हम जो कुछ करते हैं वो कर पाते हैं। इंद्रियां अगर नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे सूक्ष्म इंद्रियां हों, स्थूल इंद्रियां हों, तो हम इंद्रियों के काम करने के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। समझ लीजिए, कोई व्यक्ति किसी अपघात में वो अपना आंख खो बैठता है, दोनों आंख खो बैठता है, या उसकी सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है, तो फिर उसको इस दुनिया में रहने के लिए थोड़ी तकलीफ हो जाती है, कष्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाता है। तो हम सोचते हैं कि इंद्रियां ही सब कुछ हैं, लेकिन भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि इंद्रियों के परे भी कुछ और है। इंद्रियाणि पराण्याहुर, इंद्रियों के परे भी शरीर के ऊपर फिर ये मन है, बुद्धि है, उसके ऊपर भी आत्मा है। तो सब कुछ आत्मा के ऊपर निर्भर है। अगर आत्मा शरीर से चली जाएगी तो इंद्रियां जो कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण हमें लगती हैं वो किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे। हमें दिखाई पड़ते हैं इंद्रियां, लेकिन इनके पीछे उनको सक्रिय करने वाले कौन है, वो है आत्मा। तो उसी प्रकार से कुंती महारानी कहती हैं, ठीक है सारे समाज में सारे विश्व में हमारे नाम, हमारे ख्याति, हमारा सामर्थ्य इत्यादि ये सब भले भांति पूरी तरह से प्रतिष्ठित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसका मूल कारण क्या है। जैसे इंद्रियां अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली लगती हैं, बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि आत्मा ही महत्वपूर्ण है, इसकी वजह से इंद्रियां सक्रिय हुई हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जानते हैं कि हालांकि सारी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है, मेरे पुत्र को विश्व सम्राट कह के पुकार रही है, संबोधित कर रही है, मेरे बच्चों को बहुत शूरवीर समझ रही है, लेकिन इसके पीछे मैं जानती हूं कि असली कारण, जो आधार है, बुनियाद है, वो आप है। अगर आप नहीं होते तो हम कहीं के भी नहीं रह जाते। केवल आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसलिए हमारी ख्याति है, हमारा यश है, हमारा साम्राज्य है, सब कुछ है। वैसे लगता है भौतिक दृष्टि से कि हम ऐसे हैं कि जैसे कोई किसी को हमको परास्त नहीं कर सकता है। आखिर हमारे साथ कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप युधिष्ठिर महाराज। इनसे बढ़कर कोई राजा कौन हो सकता है? वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, वो विश्व सम्राट है, तो इससे अच्छा कौन जान सकता है कि राज्य को कैसे संभालना चाहिए, नीति का पालन, धर्म का पालन कैसे होना चाहिए? इनसे तो अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता सारे विश्व में। तो ये है मेरा पुत्र, पांडवों का सबसे बड़ा भाई, साथ साथ में भीम जैसा पहलवान, भीम जैसा शक्तिशाली व्यक्ति और कौन है यहां? उसने जरासंध, दुर्योधन जैसे बलवान लोगों को भी मार दिया, और अर्जुन जैसे योद्धा भला कहां हो सकता है? तो इस प्रकार से कुंती महारानी सोच रही है, ठीक है पांडवों की शक्ति, पांडवों के सारे गुण अनंत हैं, और साथ साथ इतना ही नहीं, उनके साथ उनकी सहायता करने के लिए सारा यदुवंश है द्वारका में। यदुकुल के निवासी, यदुवंश के सदस्य वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में जब उद्धव विदुर जी से बात करते हैं, अचानक उनकी भेंट होती है, अकस्मात तीर्थ यात्रा में जब विदुर जी निकले होते हैं और उद्धव जी भी निकले होते हैं, बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे होते हैं, तो दोनों की भेंट हो जाती है। विदुर जी को बहुत अच्छा लगता है, उद्धव जी को भी, आपस में क्या करेंगे, कृष्ण कथा ही करेंगे। तो उस समय यदुकुल के सदस्यों ने आपस में एक दूसरे की हत्या करके सारे यदुवंश को खत्म कर दिया था। ये कृष्ण की योजना थी, क्योंकि कृष्ण ने सोचा कि अब मेरी लीला समाप्त होने वाली है, मैं जिस कार्य से यहां पर आया था वो कार्य मैंने समाप्त कर दिया, दुष्टों का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना, ये सारे कार्य समाप्त हो गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने मुझे निमंत्रण किया था, मुझे आने के लिए बहुत ही प्रार्थना की थी, तो उन प्रार्थनाओं के फल स्वरूप में यहां पर आया, अब ये काम समाप्त हो गए, तो मुझे वापस गोलोक में लौट के जाना है। लेकिन ये मेरे यदुवंश हैं, इनमें से थोड़े जो हैं वो गोलोक वृंदावन से मेरे साथ नीचे आए मेरा साथ देने के लिए लीला में, और थोड़े जो हैं वो देवलोक से आए हैं मेरे निवेदन पर, और ये भी मेरी लीला में साथ भाग ले रहे हैं। तब दोनों को अपने अपने धाम में भेजना है और मुझे भी जाना है, और अगर मैं पहले ही यूं ही चले जाता हूं तो फिर ये लोग तो दुख के मारे विरह में पागल हो जाएंगे, तहस नहस कर देंगे सारे पृथ्वी में, उनको सहन नहीं होगा मेरे से विरह, और ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनको कोई रोक नहीं सकता, तो यदुवंश इतने शक्तिशाली थे कि पृथ्वी लोक की बात दूर है कि सारे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उनका अपमान भी कर सके, उनको परास्त करने की बात तो दूर है, कोई उनको बुरे शब्द बोलने लायक नहीं था, इतनी शक्ति थी उनकी यदुकुल के सदस्यों की। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे, क्योंकि क्योंकि ये उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए उनको अपार शक्ति मिली थी, ऐसी शक्ति मिली थी कि इसका सामना कोई नहीं कर सकता था। आखिर भगवान कृष्ण के निजी एक परिवार के सदस्य हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि ये भी बोझ हो गए हैं, क्योंकि इनकी शक्ति इतनी है, जब मैं चले जाऊंगा तो फिर क्या होगा इनकी शक्ति का, जब तक मैं हूं मैं उनको वश में रख सकता हूं, लेकिन जब मैं चले जाऊंगा तो ये लोग इतने शक्तिशाली हैं मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते, तो ये क्या कर बैठेंगे कुछ कहना मुश्किल है। तो इतने शक्तिशाली थे यदु वंश के सदस्य, कोई कमी नहीं थी उनके सामर्थ्य में, लेकिन वो इतना प्रेम करते थे महाराज युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से, और इतना वो श्री कृष्ण के आदेश को, इच्छा को अच्छी तरह से जानते थे कि वो समझ पाए कि युधिष्ठिर महाराज को ही विश्व सम्राट होना चाहिए। इसलिए यदुकुल के सदस्य हालांकि सबसे शक्तिशाली थे, फिर भी वो भी युधिष्ठिर महाराज के अधीन रहे, प्रेम के द्वारा, प्रेम की वजह से। ऐसा नहीं कि उनकी शक्ति कम थी इसलिए वो शरण गए युधिष्ठिर महाराज के, जैसे कि अन्य राजाओं के लिए था। वो पूरी तरह से समर्थ थे विश्व सम्राट होने के लिए, आखिर कृष्ण उनके साथ था, लेकिन कृष्ण पांडवों के साथ भी तो था। इसलिए यदुकुल इतने अच्छे मित्र पांडवों के थे, तो कुंती महारानी कहते हैं कि कौन भला हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, हमारे साथ पांडव, पांच पांडव हैं जो इतने शक्तिशाली हैं, साथ में यदुकुल हैं, सारा यदु वंश हमारे साथ में है, लेकिन ये पांडव और यदु दोनों मिलाकर साथ साथ में हमारा नाम, हमारी ख्याति, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा जब आप नहीं रहेंगे तब, क्योंकि यदुकुल के शक्ति का स्रोत भी आप ही है, जैसे पांडवों के शक्ति के स्रोत आप है, यदुकुल के शक्ति के स्रोत भी आप ही है, इसलिए आपके बिना पांडव भी खत्म, यदुलु भी खत्म, और हमारी ख्याति सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां पर वो कहते हैं के वयम, वयम मतलब हम, के मतलब क्या होगा, कैसे, नाम रूपाभ्याम, तो कैसे हम आपके बिना हमारे ख्याति को, नाम को इत्यादि बनाए रख पाएंगे, संभव नहीं है। आप जब चले जाएंगे तो हमारा सब कुछ भी चले जाएगा, खत्म हो जाएगा। भवतः दर्शनम यरही, भवतः मतलब आपका, अदर्शनम, अदर्शनम मतलब आपका दर्शन नहीं होगा, मतलब आप चले जाएंगे हमारे से, हमसे दूर चले जाएंगे, तो उस समय हमारी ये हालत होगी, ऋषिकाणाम इव ईशितुहु, ईशितुहु मतलब जीव के लिए, आत्मा के लिए, या आत्मा के संबंध में, ऋषिकाणाम मतलब हमारी इंद्रियां, ऋषिक मतलब इंद्रिया, तो हमारी वो हालत हो जाएगी जो कि शरीर की इंद्रियों की होती है जब आत्मा चले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ही मूल कारण है सब चीजों के। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसके लिए एक उपमा देते हैं। हमने रेलगाड़ियों को देखा है, विशेष करके जो मालवाहक गाड़ियां होती हैं, जो यहाँ बेलगाम में बहुत देखते हैं, यहाँ पर खड़ी रहती हैं, तो हम सड़क पर जाते हैं तो उन डब्बों को देखते हैं, रुके हुए रहते हैं, और जब वो शुरू होते हैं तो कहाँ से, इंजन से पहला धक्का लगता है, इंजन पहला धक्का लगता है, फिर वो खींचता है पहले डब्बे को, फिर पहले डब्बे और दूसरे डब्बे के बीच में एक लिंक होता है, वो चेन होता है, जंजीर होती है, फिर उसको खींच देता है, लेकिन एक दो क्षण का अंतर होता है, फिर खड़ करके आवाज आता है, फिर दूसरा तीसरे को खींचता है, तीसरा चौथे को, इस प्रकार से सारी गाड़ी जो है वो हिलती है। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला है कारणों की। हम कुछ कारण करते हैं लेकिन इसके पीछे कोई और कारण है, उसके पीछे कोई और कारण है, उसके पीछे और एक कोई कारण है। ऐसा देखते जाएं तो इंजन कहां है? इंजन कौन है? श्री कृष्ण। सर्व कारण कारणम, सब चीजों के मूल कारण उद्गम श्री कृष्ण ही है। इसलिए अगर किसी का किसी की ख्याति हो रही है, किसी की प्रसिद्धि है, किसी का नाम है, किसी की शक्ति है, कुछ भी है, ठीक हो सकता, कोई समझेगा ठीक है मेरे बल के आधार पर मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हो गया, मेरे बुद्धि के आधार पर मुझे नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है आपकी बुद्धि है, बुद्धि के बल पर मिला, लेकिन आपकी बुद्धि कहां से आई? और केवल बुद्धि से ही नोबेल पुरस्कार मिलना है ऐसे नहीं है, बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, सबको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, बहुत बलवान लोग हैं, सबको खेल के प्रतियोगिता में पुरस्कार नहीं मिलता। तो बुद्धिमान बुद्धिमान बलवान होने के बावजूद और भी कोई कारण है जिनकी वजह से किसी को यश मिलता है, किसी को किन्हीं को नहीं मिलता है। तो मूल कारण श्री कृष्ण है, इसलिए कुंती महारानी इस बात को जानती है। बिल्कुल उनके मन में घमंड नहीं है कि हम अभी राजकुमार, हम विश्व सम्राट के हम जो माता है, यहां हम देखते हैं कोई मंत्री है, कोई क्या है, तो उसके सारे सगे संबंधी, दूर दूर के सगे संबंधी भी उनका नाम ले गए, तो हम ये है ना, कोई लाल बत्ती निकल के चला गया, वो हवलदार ने रोक दिया, बोलेंगे हम फलाना फल मंत्री के, उसके भाई के, इसके भतीजे के वो है, वो है हम, इसलिए हमको छोड़ देना। कितना लंबा लंबा संबंध निकाल के बोलेंगे वो उसके आदमी है, उनको घमंड हो जाता है कि हमारा वो फलाना फलाना जो रिश्तेदार है वो कुछ है, इसलिए हम भी कुछ हैं। लेकिन कुंती महारानी ऐसे नहीं सोचती है, मेरा बेटा जो है विश्व सम्राट है, न पांडव भी ऐसा सोचते हैं कि हम विश्व सम्राट हैं, वो सब जानते हैं अच्छी तरह से कि हम जो भी कुछ हैं केवल कृष्ण की वजह से, कृष्ण नहीं है तो हम शून्य। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये बहुत सुंदर उपमा और एक जगह देते हैं, कई बार आपने ये सुना होगा, एक और शून्य का, कि हमारे दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हमारा सौंदर्य, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारी प्रसिद्धि समाज में, प्रतिष्ठा इत्यादि, ये सब एक एक शून्य के बराबर है। प्रतिष्ठा एक शून्य, सौंदर्य और एक शून्य, धन तीसरा शून्य, ऐसे हम शून्य एकत्र करने में लगे हुए हैं। सभी लोग एक के बाद एक, एक के बाद एक शून्य के को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, सोचते नहीं कि ये शून्य है, उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गोल है, बड़ा सा शून्य, ये बहुत मूल्यवान लगता है। लेकिन देखिए जितने भी शून्य हम एकत्र करेंगे इनका मूल्य क्या होगा? शून्य ही होगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जब इन एक शून्य के आगे भी अगर एक अंक लगाया जाए तो फिर उसका मूल्य जो है बहुत बढ़ जाता है, और उसके बाद जो शून्य आएंगे फिर वो उसका मूल्य और भी बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर हमारे पास ऐसे कोई भौतिक गुण हैं भी, किसी के पास कोई संगीत करने की या गाने की कला है, किसी के पास कोई हाथ की कला है, किसी के पास अन्य तरह तरह की कलाएं शक्तियां होती हैं, योग्यताएं होती हैं, लेकिन इन सब के मूल कारण कृष्ण है, कृष्ण की वजह से ही, कृष्ण की कृपा से ही हमको ये सब प्राप्त हुए हैं। इसलिए कभी भी प्रभुपाद समझाते हैं हमको घमंड नहीं होना चाहिए, और खास करके प्रभुपाद चेतावनी देते हैं उन लोगों को जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं, उनको कोई पद है, कुछ क्या है, सोचते मैं मंत्री हूं, मैं राजा हूं, तो कभी भी हमको घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी क्षण हम उस पद से बहिष्कृत हो सकते हैं। हम देखते हैं वास्तव में ऐसे होता है सारी दुनिया में, कोई भी पद यहां पर स्थायी रूप से रहता नहीं है, क्षणिक होता है। तो कुंती महारानी अच्छी तरह से जानती हैं इस बात को, इसलिए वो यहां पर ऐसे प्रार्थना करती हैं श्री कृष्ण से, ठीक है अब आपके आप जा रहे हैं ना, तो हमारी ख्याति हमारी प्रसिद्धि सब कुछ आप साथ में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो तो आपकी ही है, आपने ही दिया है। तो ऐसे एक उनका भाव है। इसलिए कुंती महारानी की ये न केवल प्रार्थना है लेकिन उनकी ये शिक्षाएं हैं, उनके उपदेश हैं। प्रभुपाद जी ने किताब लिखा टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, केवल प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती नहीं, केवल कुंती महारानी की प्रार्थनाएं नहीं, कुंती महारानी की शिक्षाएं हैं, उनके उपदेश। क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कुंती महारानी जैसी महिला जो महारानी है, विश्व की महारानी है, अगर वो ऐसा सोच सकती हैं, तो हम क्यों नहीं सोच सकते? हम तो पांडवों के बराबर नहीं हैं, न कभी हो सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी विभाग में उनके जैसे हम नहीं हो सकते। तो फिर हमें सोचना चाहिए कि पांडव जब ऐसा सोच रहे हैं, उनकी माता कुंती महारानी ऐसी सोच रही हैं, तो फिर हमें कैसे सोचना चाहिए? हर चीज में हमें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। तो अगला श्लोक उसको जरा पीछे करिए बोर्ड को। यानी अब आगे उनकी प्रार्थना को बढ़ा रही हैं। श्लोक 49। न इयम् शोभिष्यते तत्र यथा इदानीं गदाधर त्वत् पदैः अंकितामेयम् शोभिष्यते तत्र। यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः भाति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारा राज्य आपके चरण चिन्हों से अंकित है, जिसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। तो कुंती महारानी फिर से उसी बात को अलग ढंग से दोहरा रही हैं कि न केवल हमारा यश, हमारी प्रसिद्धि, हमारी ख्याति इत्यादि चले जाएगी आपके चले जाने पर, बल्कि ये राज्य के अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं वो भी सब चले जाएंगे। राज्य की शोभा जो है वो खत्म हो जाएगी, राज्य का सौंदर्य वो नहीं रहेगा। जब आप हैं तो ये सब कुछ न केवल हमारे अंदर लेकिन सारे राज्य के अंदर है। कुंती महारानी कहती हैं, त्वत्पदैर अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः, कि आपके चरण चिन्हों से ये सारा राज्य है ये अंकित है, और इसलिए ये सारा जो हमारा राज्य है शोभायमान हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों चरण चिन्ह जो हैं वो विशेष होते हैं, उनके तलवों पर, चरण तल पर विशेष विशेष अंक होते हैं, जैसे कि अंकुश है, वज्र है, कमल है आदि। तो ये विशेष चिन्ह और किसी में नहीं रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों पर भी होते हैं, उनके तलवों में भी होते हैं, ये बल्कि भगवान को पहचानने का एक मार्ग है। कई मार्ग हैं वैसे, एक तो ये है कि भगवान के बारे में भविष्यवाणी शास्त्रों में होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान का अवतार हूं तो हमें पूछना चाहिए कि शास्त्र में कहां कहा है कि आप इस समय आने वाले हैं, कौन सा शास्त्र दिखाइए। दूसरी बात है उनको विश्व रूप दिखाना चाहिए, विराट रूप, विराट रूप तो नहीं दिखा सकते। तीसरी बात कि ऐसा कोई अद्भुत से अद्भुत कार्य कर दिखाना चाहिए जो कि मनुष्य के लिए संभव नहीं है। और चौथी बात कि ऐसे उनके शरीर के ऊपर चिन्ह होने चाहिए, जैसे कि तलवों के ऊपर, करकमलों के ऊपर इत्यादि, जिनसे हम पहचान सकें कि ये चिन्ह केवल भगवान के हैं और किसी के नहीं हो सकते। तो भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर में थे तो अपने चरण चिन्हों से उस भूमि को सुशोभित करते थे, बल्कि पृथ्वी माता अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह जो हैं उनके शरीर के ऊपर पड़े हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह सब कुछ को बहुत सुंदर बनाती हैं। वृंदावन में भी ऐसे वर्णन आता है, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही गोप वृंदय ही। जो गोप वृंद जो है कृष्ण के साथ जाते थे वन में, उस वन में जो कि श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के द्वारा सुशोभित थे, जो बहुत सुंदर था। वैसे भी वृंदावन बहुत सुंदर है, लेकिन वृंदावन का सौंदर्य और बढ़ जाता था क्योंकि श्री कृष्ण के चरण चिन्ह वहां पर थे और ये चरण चिन्ह वहीं पर रहते थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कभी कभी जब रेती में, मिट्टी में चिन्ह पड़ जाते हैं हमारे पैरों के, तो वो तो निकल जाते हैं, हवा आती है, धूल उड़ जाता है उसके ऊपर, या कोई और व्यक्ति आता है, पशु आता है, तो चरण चिन्ह रहते नहीं हैं। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह ऐसे रहे कैसे? तो वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि इसका कारण ये है कि सारे जो वृंदावन में रहने वाले पशु प्राणी सब कुछ जो है, मनुष्यों की बात तो दूर है, वो सब श्री कृष्ण के प्रति बहुत तीव्रता से आकर्षित थे और कृष्ण को अपने आंखों से वो पान करने का प्रयास करते थे और कृष्ण से जो भी कुछ संबंधित है उसको बहुत ही सुरक्षित रखते थे। तो जब वन के पशु जैसे मोर आदि देखते थे कि श्री कृष्ण यहां से चले हैं और ये उनके चरण चिन्ह हैं, हिरणियां भी, हिरण हिरणी भी वहां से बहुत सावधानी से चलते थे, अरे यहां श्री कृष्ण के चिन्ह हैं, चरण चिन्ह, इनके ऊपर नहीं जाना चाहिए, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए, तो बगल से चले जाते थे, उनको बनाए रखते थे अच्छी तरह से। और जो हवा है वो तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, वायुदेव तो उनके दास हैं, भीषास्माद् वातः पवते, शास्त्रों में बताया गया कि वायु भी है वो भगवान कृष्ण के डर से चलता है। तो वायु भी वहां वृंदावन में श्री कृष्ण और उनकी लीला की सहायता करता है, तो सोचता था कि इस तरह से मैं चलूंगा तो मिट्टी भगवान के चरण चिन्हों पर आ जाएगी, वो मिट जाएंगे चिन्ह। तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण धन है, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह यहां वृंदावन के धन है, तो उसको बनाए रखना चाहिए। जैसे हम सावधानी से हमारे नोटों को रखते हैं ना, अरे बच्चे के हाथ में, अरे वो फाड़ देगा तो क्या होगा, है कागज का टुकड़ा, इसलिए बच्चा समझता नहीं है क्या कागज है, फाड़ दिया तो क्या, अरे आप सोचेंगे अरे अरे 500 रुपए का नोट गया है, फाट गया। तो कितना सावधानी से नोट रखते हैं हम। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह इतने मूल्यवान है कि इनको कोई धन, भौतिक धन से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इसलिए वृंदावन के सारे निवासी सहयोग करते हैं एक दूसरे की, कैसे इस धन को बचा के रखा जाए, कोई भी इसके ऊपर पैर नहीं देता, कोई भी इसको नष्ट नहीं होने देता। और इसलिए स्वपद रमणम, इसलिए वृंदावन इतना खूबसूरत है। उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण गोवर्धन के ऊपर जाते थे तो भी गोवर्धन ऐसे प्रफुल्लित हो उठता था। हम लोग वैसे गोवर्धन पर नहीं जाते, गोवर्धन के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से दिखाया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी वो भक्त के रूप में आए हैं, इसलिए भक्त को क्या मर्यादा का पालन करना चाहिए वो उन्होंने दिखाया कि गोवर्धन न केवल कृष्ण का दास है, वो न केवल कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, परंतु वो भगवान के अवतार भी माने जाते हैं, भगवान के रूप भी माने जाते हैं। इसलिए गोवर्धन लीला के समय आप तो जानते हैं कि गोवर्धन ने सारे भोग को स्वीकार कर लिया, जितना ब्रजवासियों के पास था, सारे आसपास के गांवों से सारा जितना भी था वो सब उन्होंने स्वीकार कर लिया, और भी और अणियोर और चाहते थे, लेकिन तुलसी पत्ता दे के फिर वो संतुष्ट हो गए। तो गोवर्धन के बारे में भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद है, कि जब गोवर्धन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और बलराम चलते थे, यद राम कृष्ण, राम मतलब बलराम, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद है, मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर यत् पाणीय सूय वस कंदर कंद मूलैहि। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि गोपियां एक दूसरे के बारे में आपस में ऐसा बोल रही हैं, ये वेणुगीत से हम चर्चा किए थे ना पहले, तो गोपियां एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं और गोवर्धन को देखते हुए वे कहती हैं कि देखो गोवर्धन कितना कितना खुश है, प्रमोद है, प्रमोद मुद मतलब खुशी, प्रमोद मतलब प्रकृष्ट रूपेण मुदित है, तो बहुत ही ज्यादा खुश है ये गोवर्धन, क्यों, क्या कारण है, इसका राज क्या, रहस्य क्या है, क्योंकि श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श, भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ और उनके सारे ग्वाल बालों के साथ, गऊओं के साथ उनके ऊपर है, सर के ऊपर। तो हालांकि गोवर्धन इतना विशाल है, उस समय तो विशाल था, अब तो बहुत कम हो गया है मात्रा में, तो गोवर्धन हालांकि इतना मजबूत कि इंद्र के वज्र जो है वो उसके लिए फूल के जो भेंट लगे। अब हम देखते हैं कि इंद्र भगवान जो अपने वज्र से पहाड़ों को तोड़ा करते थे, ऐसे वैदिक शास्त्र में कहा गया है, रामायण आदि शास्त्रों में, कि पहले भी इन पहाड़ों के पंख हुआ करते थे और पहाड़ उड़ा करते थे, उड़ के जाते थे इधर उधर, फिर इंद्रदेव ने इन सबको काट दिया और अपने वज्र से सब ये कर दिया, तब उसके बाद ये पहाड़ जो है वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो इंद्र का वज्र इतना शक्तिशाली है कि वो पहाड़ों को तोड़ सकता है, भस्म कर सकता है, लेकिन जब इंद्र ने बहुत सारा वर्षा, बहुत सारा पानी भेजा संवर्तक बादल के द्वारा और इतनी बिजली हुई, इतने वज्र आए, लगे गोवर्धन को, लेकिन गोवर्धन को कुछ नहीं हुआ। तो गोवर्धन इतना शक्तिशाली, इतना मजबूत, इतना बड़ा विशाल, गोवर्धन को केवल लगा कि फूल अर्पण कर रहे हैं इंद्रदेव हमको, कोई दर्द नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमल उनके ऊपर स्पर्श उनका हो रहा था। तो गोवर्धन इतने बड़े हैं फिर भी उनको अच्छा लगता है कि न केवल कृष्ण और बलराम लेकिन उनके भक्त भी उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर अपने चरण डाले हैं। उनके भक्त कौन है, न केवल ग्वाल बाल लेकिन गौएं भी, साथ साथ जो मोर हैं, जो मृग हैं, पक्षी हैं, वो सब उनके भक्त हैं वृंदावन में। तो सब उनके सिर के ऊपर से, शरीर के ऊपर से चल रहे हैं और उनको उतना अच्छा लगा, प्रमोद। हमारे पैर के ऊपर कोई गड़बड़ में पैर रख देता है तो हम इतना हल्ला करते हैं कि नहीं, अरे मेरे पैर के ऊपर, मुझे धक्का मारा, मुझे पैर के ऊपर रख, अरे भक्त ही डाल रहा है ना पैर, तो ठीक है, क्या है उसमें। तो गोवर्धन किसे उदाहरण, गोवर्धन से हमको सीखना चाहिए। कितनी खुशी हुई जब भक्त उनके और भगवान के साथ उनके उनके शरीर के ऊपर चले। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल कहीं रखते हैं तो वो स्थान बहुत ही पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, सुंदर हो जाता है और सब लोग उस जगह में खुश हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हस्तिनापुर में भी ऐसे ही सब कुछ बहुत ही सुखी और शुभ था, केवल इस वजह से कि भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह वहां पर थे। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी कुछ हो जाता है वो सुंदर हो जाता है। जब हम किसी चीज के निकट होते हैं ना तो वो चीज ज्यादा सुंदर लगता है। जैसे प्रभुपाद कभी कभी उदाहरण देते थे कि एक माँ अपने बच्चे को सदैव सुंदर समझती है, बच्चा अंधा भी हो लेकिन उसको पद्मलोचन कहेंगी, है ना, निकट होने से। तो हालांकि दूसरे लोग भले कुछ भी कहें लेकिन हम जब किसी व्यक्ति के निकट होते हैं तो उसको बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत सुंदर समझते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित का एक श्लोक है चाणक्य नीति से, पृथ्वी भूषणम राजा नारीणाम भूषणम पति शर्वरी भूषणम चंद्रो विद्या सर्वस्य भूषणम। एक राजा कब जब अच्छी तरह से राज्य करता है, अच्छी तरह से प्रजा को संभालता है तो फिर सारा राज्य जो है बहुत सुंदर लगता है। उसी प्रकार से एक नारी वैसे भी सुंदर हो लेकिन अपने पति के साथ हो तो और भी सुंदर लगती है। तीसरी बात, वैसे तो आकाश जो है, आसमान बहुत सुंदर है लेकिन पूर्णिमा के रात को जब पूर्ण चांद है और साथ साथ में तारे भी हैं तो आसमान और भी ज्यादा सुंदर लगता है चंद्रमा के संपर्क से। और साथ साथ में अगर कोई व्यक्ति दिखने में सुंदर न भी हो, भले वो कुरूप भी हो, लेकिन अगर उसके पास विद्या है तो वो उसका सौंदर्य है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब श्री कृष्ण किसी के संग में आ जाते हैं तो उस चीज को सुंदर बना देते हैं। जैसे विद्या किसी के पास आ जाता है उस व्यक्ति को सुंदर बना देता है, चंद्रमा आसमान में आ जाता है आसमान को सुंदर बना देता है, अच्छा राजा आ जाता है प्रजा में, राज्य सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार से जहां श्री कृष्ण आ जाते हैं तो वो सब कुछ वहां खिल उठता है, प्रफुल्लित हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तो कुंती महारानी इसी बात को यहां पर कह रही हैं। और आजकल के जमाने में हमारे सारे आधुनिक सभ्यता में कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं है, इसलिए कुछ भी यहां पर सुंदर नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं आजकल का ऐश्वर्य, आजकल का जो सौंदर्य, ये क्या है? आजकल का ऐश्वर्य प्लास्टिक का ऐश्वर्य है, सोना चांदी कहाँ है? और आजकल का सौंदर्य वो भी आधुनिक जो है केवल बनावटी सौंदर्य है, सच्चा सौंदर्य तो नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम अमेरिका में गए पहली बार तो ये युवक और युवतियां जो हैं वो वैसे तो सुंदर थीं लेकिन बड़े उदास उनके चेहरे थे, क्योंकि उनको जीवन में कोई ध्येय नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, इधर उधर ऐसे भटक रहे थे, अपना समय अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। लेकिन जब से ये लोग कृष्ण भक्त बने हैं तो देखो इनका चेहरा खिल उठा है, कितने खुश दिखते हैं, प्रकाशमान हो गए हैं इनके चेहरे, केवल कृष्ण का संपर्क करने से। कृष्ण के जीवन में आए, कृष्ण निकट आए उनके, उनका सब कुछ सुंदर हो गया, उनका जीवन सुंदर हो गया, उनका शरीर सुंदर हो गया, एक तेज आ गया उनके शरीर के ऊपर। लेकिन आजकल जब कृष्ण केंद्र में नहीं है तो सारे समाज में दुख ही दुख है, कहीं कुछ सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बस केवल कृष्ण को अगर हम केंद्र बिंदु बनाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे यहां पर कुंती महारानी कहती हैं, नेयम शोभिष्यते तत्र यथे दानीं गदाधर। अभी आप चले जाएंगे तो ये सारा सौंदर्य चले जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण तो जा रहे हैं हस्तिनापुर छोड़कर, लेकिन फिर भी एक दृष्टि से नहीं जा रहे हैं। क्यों? वो इसकी व्याख्या करते हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए, मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, द्वारका से हस्तिनापुर गए इत्यादि, लेकिन फिर भी वृंदावन के निवासी बहुत तीव्रता से श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। एक भी क्षण ऐसे नहीं बीतता जिसमें ब्रजवासी कृष्ण का स्मरण नहीं करते। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं दशम स्कंद में कि सारे ब्रजवासियों का एक ही कार्य हुआ करता था जब कृष्ण चले गए। वो क्या कार्य था? रोना। बस एक ही कार्य, कृष्ण ने कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। कृष्ण चले गए तो उस स्मरण में, उस विरह में उनको इतना तीव्र स्मरण हुआ कि वो तीव्र स्मरण उपस्थिति के बराबर था। बल्कि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसे विरह में जो स्मरण होता है वो उपस्थिति साक्षात जो सानिध्य से भी अधिक होता है। वो उपस्थिति, एक बार श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ ही बैठी थी, अचानक कृष्ण ने कुछ कहा, उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने कुछ समझा और सोचा कि कृष्ण चले गए। कृष्ण कुछ बोल रहे थे, मुझे जाना है, कुछ करना है, तो जाना है वो मन में आया, वो सोचा कि चले गए। तो हालांकि श्री कृष्ण पास में बैठे थे लेकिन राधा रानी अपने मन में विचार में रहे कि कृष्ण नहीं है, नहीं है, ने बेहोश होकर गिर गए। कृष्ण थे, बैठे उनके पास में ही, लेकिन सोच रही है कि कृष्ण चले गए, चले गए। तो जब मिलन है, जब सानिध्य है, निकटता है, उस समय विचार में भी व्यक्ति सोच सकता है कि नहीं है। अब हम सबकी दशा भी एक दृष्टि से, वैसे राधा रानी तो भाव में कह रही है, हम लोग भाव में नहीं कहते, कृष्ण हमारे हृदय में है, इतने निकट है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कृष्ण सबके साथ में, कृष्ण तो हमसे दूर नहीं है, फिर भी हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है देखने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का शारीरिक रूप से हमारे निकट में होना ये आवश्यक नहीं है। ये ब्रजवासियों ने सिखाया कि उनके विरह में उनका स्मरण इतना तीव्र था कि श्री कृष्ण उनके पास में ही थे, कृष्ण कभी भी उनके दूर नहीं गए। इसको कहते हैं विप्रलंब सेवा। चैतन्य महाप्रभु ने इसको सिखलाया कि भगवान के विरह में उनका प्रेम करना यह उनके साथ में रहकर करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भाव उनके विरह में अनुभव होगा वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसी प्रकार से कुंती महारानी जानती हैं कि जब कृष्ण चले जाएंगे वो कृष्ण को भूलने वाले नहीं है, ना पांडव भी भूलने वाले हैं उनको, तो कृष्ण का स्मरण करते ही रहेंगे, वो तड़पते तड़पते रह जाएंगे, और उस तड़प में, उस दुख में कृष्ण उनके साथ में ही रहेंगे। ये है आध्यात्मिक विरोधाभास, यह है आध्यात्मिक तत्व। लेकिन हम देखते हैं कि कौन विरह में रह सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति। अब इतने सारे व्यक्ति इस दुनिया से चले जा रहे हैं ना, कितने लोगों का देहांत होता है कि हम नींद खो बैठते हैं उनके लिए, क्यों नहीं, क्या कारण है? हम क्यों, हमारा नींद हराम क्यों नहीं हो जाती क्योंकि एक व्यक्ति चले गए हमसे दूर, हम फिर भी सो रहे हैं अच्छी तरह से। कितने लोग मर रहे हैं दुनिया में, हम क्यों शांति से सो सकते हैं? क्योंकि उनके प्रति हमारा प्रेम नहीं है, तो विरह कहां से होगा? तो विरह उस व्यक्ति के लिए होगा जिसके हृदय में प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति विरह तब होगा जब हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। अगर कृष्ण प्रेम नहीं है तो कृष्ण से विरह कहां से होगा? तो अगर ब्रजवासियों के मन में इतनी तीव्र विरह की भावना है तो इसका मतलब है कि उतनी तीव्र प्रेम है, इसलिए विरह की भावना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि हमें भी ऐसे वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों में चलना चाहिए। और कुंती महारानी और पांडव समझते हैं कि ब्रजवासी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, हम इनके पास नहीं जा सकते, इनकी तुलना हम अपने आप से नहीं कर सकते। लेकिन वो सोचते हैं कि हाँ, हम भी तो हैं थोड़े बहुत भक्त, हम भी तो आपके बिना नहीं रह सकते, इसलिए आप जब जाएंगे आपका शरीर जाएगा लेकिन हमारे हृदय में हमने आपको पकड़ के रखा है, इसलिए आप हमारे साथ में रहेंगे। ये प्रभुपाद के कहने का मतलब है। तो अगर हमें भी इस स्थिति को प्राप्त करना है तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें भी हमारे ऋषिकों को, हमारी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना है, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया था। अम्बरीश महाराज ने अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पण किया था। सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति अच्युत चकार सत कथोदये। अम्बरीश महाराज के बारे में सुखदेव गोस्वामी मंदिर के मार्जन करने के लिए और अन्य साधारण सी सेवाएं करने के लिए वो उपयोग करते थे। वर्णों का उपयोग जो है अच्युत या श्री कृष्ण की सुंदर कथाओं को सुनने के लिए उपयोग करते थे। अपने आंखों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए करते थे। अपने हाथों को, अपने शरीर को भक्तों का स्पर्श करके, उनका आलिंगन करके अपने आप को पवित्र करने में इस्तेमाल करते थे। अपने पैरों को भगवान के मंदिर में जाने में या परिक्रमा करने में, तीर्थ स्थानों में जाने में वो इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज का उदाहरण हमारे सामने है। प्रैक्टिकल दृष्टि से हम कैसे उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं? तो 24 घंटे हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम श्री कृष्ण के सेवा में लगे रहें। जो भी अनुकूल है इसके लिए हमें उसे स्वीकारना चाहिए और जो प्रतिकूल है उसको हमें त्यागना चाहिए। तो कुंती महारानी के पद चिन्हों में हमें चलने का प्रयास करना चाहिए और उसी प्रकार से प्रेम और कृतज्ञता की भावना भगवान श्री कृष्ण के प्रति रखनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसे भी रथ यात्रा है, सबको सेवा के लिए भी जाना है, इसलिए आज प्रवचन ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी इत्यादि है, काटे उसका कारण क्या है? अभी देखो पहाड़ इधर उड़ के चले जाए तो चिंता होगी ही ना, कहीं सर पे गिर जाए तो क्या होगा, उत्पात हो गया ना। पहाड़ के पहाड़ चले जा रहे हैं तो शांति का वातावरण तो नहीं हो सकता है। और खास करके जो नौजवान पहाड़ थे वो तो ज्यादा जोश में होते थे, जैसे नवयुवक कोई मोटरसाइकिल लेता है नया, 17-18 साल का, अभी अभी लाइसेंस मिला है उसको, नहीं भी मिला हो, नहीं गाड़ी भी मिली है, हूं करके चला के लेके जाते हैं, है ना, खतरा होता है सबके लिए। तो पहाड़ भी हैं, थोड़े उनमें से नौजवान भी हैं, उनको थोड़ा जोश ज्यादा रहता है, खतरा है ना। रावण की गोपियां और साथ साथ कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, इसलिए उनको विरह की भावना की लगी। तो जब हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, जब मिलन नहीं हुआ हमारा भगवान के साथ, तो फिर हमें विरह की भावना कैसे जागृत हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसका प्रश्न है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा आप उत्तर दीजिए, गोपियों को, ब्रजवासियों को, कुंती महारानी, पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका निजी संग प्राप्त हुआ, इसलिए प्रेम हुआ, और प्रेम हुआ तो फिर उनको विरह की भावना भी हुई। लेकिन हमें तो कृष्ण का सानिध्य नहीं मिल रहा है, हमें तो कृष्ण का दर्शन नहीं किया, तो फिर हमें विरह की, हमारे अंदर विरह की भावना कैसे आ सकती है? हाँ बताइए, का दर्शन नहीं है ऐसा कह सकते हैं? सामने कौन है? राधा गोकुलानंद है ना, तो उनमें और वृंदावन में रहने वाले कृष्ण इनमें कोई अंतर है? हस्तिनापुर में आने वाले कृष्ण और इनमें कोई अंतर है? कोई नहीं। तो अगर कुंती महारानी को और पांडवों को, ब्रजवासियों को कृष्ण का दर्शन हुआ, हमें भी हो रहा है, इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है, पहली बात। इसलिए इनके प्रति भी हम प्रेम जागृत करके विरह की भावना हो सकती है। हम सोच सकते हैं कब हम राधा गोकुलानंद मंदिर में जाएंगे, कब ये टीवी का आज छूटेगा, ये टीवी के प्रोग्राम से ज्यादा आकर्षित हम राधा गोकुलानंद से कब होंगे। जब राधा गोकुलानंद में जाते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत आकर्षित करते हैं राधा गोकुलानंद हमको, फिर घर जाते हैं, फिर वो टीवी के सामने बैठ जाते हैं तो राधा गोकुलानंद को भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, कैसे वो होएगा? तो ऐसे सोच के कि चलो आसक्ति हमारी राधा गोकुलानंद के प्रति हो, उसको जागृत कर सकते हैं, वही विरह की भावना। लेकिन जब मौका है साक्षात दर्शन करने के लिए तो उसको गंवाना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए। इसलिए सबको चाहिए कि वो बार बार मंदिर में आए, ज्यादा से ज्यादा मंदिर में आए। जितना ज्यादा हम मंदिर में आएंगे, कीर्तन में, प्रवचन में भाग लेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा प्रेम बढ़ेगा और फिर विरह की भावना भी आएगी। जब हम वापस घर में जाएंगे लगेगा अरे कब हम आएंगे, कब अगला दिन सुबह मंगल आरती का समय आएगा कि हम जल्दी से जप के लिए मंदिर में जाएंगे, दर्शन के लिए जाएंगे, कीर्तन प्रवचन के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से विरह की भावना कम से कम हमारे मंदिर के अंदर जो विग्रह हैं उनके प्रति करेंगे तो इस विरह में और उस विरह में कोई अंतर नहीं है। यह उत्तर का एक भाग है। और कोई? हाँ जी, बहुत अच्छा। शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रों को सुन के हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, है ना? भाग श्रीमद् भागवत में और कृष्ण में कोई अंतर है? नहीं है। तो जब हम श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कृष्ण हमारे बीच में है। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। भागवत में कहा गया है जब सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य में स्थित ऋषियों ने प्रश्न किए कि अब कृष्ण तो चले गए तो यहां धार्मिक मार्गदर्शन करने के लिए कौन रहेगा, तो उसका उत्तर क्या था? ठीक है, कृष्ण स्वधाम उपगते, वो अपने धाम में चले गए श्री कृष्ण, बराबर है, ठीक है। धर्म ज्ञान आदि भी सह, साथ में धर्म ज्ञान ले गए, और इस युग में कलो नष्ट दृशाम एष, कलयुग के लोगों की दृष्टि जो है नष्ट है, भौतिक दृष्टि से भी चश्मा वगैरह लगते हैं, साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं है, इसलिए पुराण अर्क अधुन उदित है। ये पुराण, ये भागवत पुराण जो अर्क सूरज के समान है, इसका अधुन अभी अभी, आधुनिक मतलब अभी अभी उदित हुआ है ये श्रीमद् भागवत, अभी अभी ये इसका श्रीमद् भागवत, भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ है सबको धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए। यही श्री कृष्ण है, साहित्य रूप में उनका अवतार है। इसलिए अगर हम भगवद गीता श्रीमद् भागवत को बार बार पढ़ेंगे, बार बार रोज नित्यम भागवत सेवया रोज सुनेंगे तो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी समझाया करते थे, जो लाभ अर्जुन को मिला श्री कृष्ण के साक्षात श्री कृष्ण के मुखारविंद से भगवत गीता का उपदेश सुनने में वही लाभ हमें हो सकता है अगर हम ये भगवत गीता जैसे है वैसे यथारूप इसको हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो अर्जुन का भाग्य हमें भी प्राप्त हो सकता है क्योंकि ये संदेश अभिन्न है उनके उपस्थिति से। तो केवल भगवान के बारे में सुनने से हमें प्रेम जागृत हो सकता है और इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक भगवान श्री कृष्ण की बहुत महत्वपूर्ण भक्त है जो ने भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था कम से कम इस लीला में और केवल सुन के उनके बारे में प्रेम प्राप्त हुआ और तीव्र विरह हो गया। कौन? रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी तो कौंडिन्यपुर में रहती थी अमरावती के पास और उन्होंने संतों से भक्तों से नारद मुनि जैसे भक्त जब आते थे उनके पिता राजा भीष्म के दरबार में तो कृष्ण का गुणगान अक्सर किया करते थे। तो कन्या रुक्मिणी वहां पे उपस्थित होकर ही सबको सुनती थी और केवल सुनते सुनते कृष्ण के प्रति आकर्षण हो गया। कभी देखा नहीं था वो टेलीविजन का जमाना नहीं था। केवल उन्होंने सुना और सुन के शुद्ध प्रेम जागृत हो गया और फिर उन्होंने चाहा कि मैं कृष्ण अगर नहीं होंगे मेरे साथ मेरे से विवाह नहीं करेंगे तो मैं जी नहीं सकती मैं प्राण त्याग करूंगी। इतना विरह हो गया केवल सुनने से। तो इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम शुरुआत होती है श्रवण से। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सब मंदिर में आए और हम सब कृष्ण कथा को नियमित रूप से ज्यादा प्रतिदिवस श्रवण करने का प्रयास करें। हर दिन अगर नहीं हो पाता तो जितना हो सके कोशिश करना चाहिए। ये हमारे गंभीरता भक्ति में गंभीरता का लक्षण है। हम कितना सुनना पसंद करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जब उनके कोई शिष्य गए थे कि आप अभय बाबू को अभी मंदिर का प्रेसिडेंट बनाइए बंबई में, उस समय प्रभुपाद जी अभय चरण डे के नाम से जाने जाते थे और वो गृहस्थ थे बहुत अपने व्यापार में वगैरह थोड़े बहुत व्यस्त थे। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा कि नहीं इनको अब डिस्टर्ब नहीं करो, सही समय में ये बहुत कुछ करने वाले हैं क्योंकि इनका सबसे बड़ा गुण मैंने नोट किया है सबसे पहले कि बहुत ध्यान से ये लड़का श्रवण करता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नोट किया इस बात को सबसे जरूरी बात। बहुत सन्यासी भी थे उनके बीच में उनके शिष्यों के बीच में लेकिन सबके बीच में उन्होंने इनको नोट किया कि हाँ ये ध्यान से सुनता है। और ये तब की बात है जबकि एक यात्रा निकली थी राधा कुंड के लिए और सारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ के निवासी जो सन्यासी थे ब्रह्मचारी थे और साथ साथ में थोड़े बाहर रहने वाले भक्त भी आए थे, अभय बाबू उनमें से थे। और उस दिन उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने राधा कुंड के तट पर श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक के ऊपर जन्मादस्यतन्वयाद इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट इस श्लोक के ऊपर पूरा एक महीना प्रवचन दिया। कोई रासलीला की बात नहीं की, कोई कुछ नहीं, राधा कुंड की भी बात नहीं की, केवल तत्व फिलॉसफी पूर्ण गहराई में फिलॉसफी तत्व हर रोज प्रवचन देते थे। 30 दिन लगातार लंबे लंबे प्रवचन केवल 30 दिन एक श्लोक के ऊपर। और उस समय काफी लोग आए थे, अरे हम चलो यहां परिक्रमा में जाएंगे। हाँ कोई पार्टी निकल गई तो थोड़े लोग बैठते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नोट किया कभी कभी मेरे सन्यासी भी भक्त भी गए ब्रह्मचारी भी गए गृहस्थ लोग भी गए लेकिन ये लड़का गया नहीं, ये लड़का परिक्रमा छोड़कर मुझसे सुनने के लिए बैठा है क्योंकि वो जानता है कि परिक्रमा से ज्यादा महत्वपूर्ण सुनना है। हालांकि परिक्रमा का भी स्थान है जब भक्तों के संग में जाते हैं जनेशु अभिज्ञेशु, जब भक्तों के बीच में जाएंगे सुनेंगे तो फिर महत्व का होता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर चेतावनी देते हैं कि अकेले में इधर उधर घूमना फिरना तीर्थ स्थानों में ये कलयुग के लिए बस माया का जाल है, बस और कुछ नहीं है। तीर्थ स्थानों में प्रभाव आजकल शक्ति कम हो गई है, बहुत तीर्थ स्थानों की शक्ति क्षीण हो गई है, क्योंकि कलयुग जैसे बढ़ते जाता है पापियों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है और वो इतना बोझ कर रहे हैं तीर्थ स्थानों के ऊपर कि उनकी शक्ति ही प्राय खत्म हो चुकी है। लेकिन जब वैष्णव होते हैं, जो सच्चे वैष्णव होते हैं, उनकी वजह से ये तीर्थ स्थान अभी भी जीवित हैं। तो ऐसे तीर्थ स्थान में जाके अगर हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, भक्तों से सुनेंगे नहीं, तो तीर्थ यात्रा हमारी निष्फल होगी प्राय। तो हालांकि सब लोग गए थे, प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ थे, उनका छोटा लड़का भी था, वो सुन रहे थे, और उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया था कि कभी अगर तुम्हारे पास पैसे आए, हाँ तुम व्यापार कर रहे हो, व्यापार में भी सेट हुए नहीं हो, अगर कभी तुम्हारे पास पैसे आए पुस्तक छापो। तो प्रभुपाद जी को कभी भी भक्ति सिद्धांत प्रभु सरस्वती ठाकुर कभी बुलाकर ऐसी बातें उनको आदेश वगैरह उपदेश दिया करते थे। तो उनके गुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने फिर इतने बड़े पैमाने पर बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, जो आजकल सारे दुनिया में सबसे पहले नंबर का शायद प्रकाशन केंद्र होगा। तो कहने का मतलब ये है श्रवण का महत्व। जो व्यक्ति बार बार अधिक से अधिक भक्ति भाव से ध्यान पूर्वक श्रद्धा भाव से श्रवण करेगा वो जल्दी प्रगति करेगा। नम्रता से जो व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा उसकी प्रगति कम होगी, कम गति से होगी। तो ऐसे हम श्रवण करेंगे तो फिर प्रेम स्वाभाविक रूप से आएगा ही आएगा, और जब प्रेम की भावना आएगी विरह की भावना भी आएगी। ठीक है, समाज में प्रेम की भावना बनाए रखने के लिए प्रमुख अनुकूल वो प्रतिकूल चीजें कौन सी हैं, कृपया बताएं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों अगर ये यहां संभव नहीं तो कहीं भी संभव नहीं, ये गारंटी की बात है। बाहर की दुनिया में लोगों के बीच में प्रेम है, हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि कृष्ण केंद्र में नहीं है, यहां कृष्ण केंद्र में है। तो अगर भक्तों के बीच में भी प्रेम रखना है तो क्या करना है, कृष्ण को केंद्र में रखना है। कृष्ण को केंद्र में रखने का मतलब है किसी दूसरे चीज को नहीं रखना है केंद्र में, ना हमारे स्वार्थ को रखना है, ना हमारे अहंकार को रखना है, ना किसी अन्य चीज को रखना है। हम सब एक काम के लिए यहां पर आए हैं, कृष्ण की सेवा करने के लिए और वैष्णवों की सेवा करने के लिए, बस। कृष्ण की सेवा मतलब प्रचार करना, वैष्णवों की सेवा मतलब भी प्रचार करना और अन्य भी उनकी सेवा करना। हम कोई भी हो, कुछ भी हो, हम वैष्णव सेवा से परे नहीं हैं, बल्कि वैष्णव सेवा से ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अगर ये भावना हमारे अंदर हम बनाए रखेंगे, हर एक के अंदर, कि हम अन्यों के, वैष्णवों के दास हैं, तो ही यह संभव है, अन्यथा नहीं। भले हमारे साधना बहुत मजबूत हो, भले हम श्रवण भी कर रहे हो, लेकिन हेतु कुछ और अगर होगा, अगर वो सेवा भाव से हम श्रवण नहीं कर रहे होंगे, तो फिर वो प्रेम को जागृत होना मुश्किल होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा है, वो कौन सा श्लोक है, तीर्थ निषेवनाथ नहीं, दूसरा, शुश्रुषो शब्द धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। शुश्रूषो शब्द धानस्य, शुश्रूषो मतलब श्रवण करना, लेकिन प्रभुपाद समझाते शब्द धानस्य, श्रद्धा से, भक्ति भाव से, नम्रता से, वासुदेव कथा रुचि, तब वासुदेव कथा के प्रति रुचि हो जाएगी, तब प्रेम हो जाएगा। सेवा भाव भक्तों के बीच में नहीं रखेंगे तो श्रवण के लिए भी रुचि जागृत नहीं होगी। अभी चर्चा हो रही थी ना कि भक्ति को जागृत करने के लिए श्रवण आवश्यक है, लेकिन श्रवण किस अवस्था में कर पाएंगे? जब हम वैष्णव के दास बनेंगे तब वैष्णव की कृपा से, कृष्ण की कृपा से सुनने के लिए हमें कोई रुचि होगी, नहीं तो हम जितना भी बैठेंगे बस सो जाएंगे, नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ कारण हो जाएगा, रुचि जागृत नहीं होगी। जब तक कि हम अपने आप को पूरी तरह से नम्र बना के वैष्णवों की सेवा में नहीं रहेंगे। ये कठिन है आसान है ये समस्या नहीं है, कठिन हो आसान हो जो भी कुछ हो, अगर हमको कृष्ण प्रेम चाहिए तो हमको ये करना है बस, नहीं चाहिए तो नहीं करें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो ये प्रश्न यही है ना कि कैसे अनुकूल चीज क्या है, मैं ये कहां गया? तो अनुकूल चीज यही है कि हम सबसे पहले अपने आप को पहचान लें कि हम सारे अन्य वैष्णवों के दास हैं, चाहे वो नए भक्त हों, पुराने भक्त हों, सीनियर जूनियर, हमसे उम्र में कम हो, उम्र में ज्यादा हो, कुछ भी हो, हम सबके दास हैं। इस भावना को बनाए रखना ये सबसे अनुकूल बात है, और इस भावना को नहीं रखना ये सबसे प्रतिकूल बात है। तो हमारे दैनिक जीवन में भी हमें बहुत सावधान होना चाहिए, बड़े आदर से वैष्णवों को आदर देना चाहिए, हर एक वैष्णव को आदर देके, हालांकि कभी कभी भक्तों के बीच में ये ठीक है इधर रखना चाहिए कि उधर रखना चाहिए, फिर इसमें हो जाएगा नहीं उधर नहीं उधर, हो सकता है, लेकिन दोनों ही कृष्ण के सेवा के लिए है, और अगर ऐसा भी हो भी जाता है तो उसको आसानी से मिटा देना चाहिए। जैसे एक पानी के ऊपर लकीर, पानी के ऊपर लकीर रहता है ज्यादा, एक रेखा लाइन कीजिए पानी के ऊपर, क्या होगा उसमें? एक क्षण के लिए रहेगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से वैष्णवों के बीच में जो मतभेद होते हैं वो पानी के लकीर के समान होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पत्थर के लकीर बन जाए। अगले जन्म में भी याद रखे, पिछले जन्म में इसने मुझे मारा था, उसने मुझे ऐसे किया था, वो मेरे साथ ऐसे बोला था मेरे उसने, तो ये वैष्णव है। वैष्णव जो है दिल में नहीं रखता कि उसने मेरे खिलाफ क्या किया था, मेरे को ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, ये है वैष्णव। हम सबको वैष्णव, हम तो वैष्णव क्या, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णव तो बहुत ऊंची चीज है, वो आपको बताया होगा, एक बंगाली कवि थे, उन्होंने बहुत सुना था ये वैष्णव वैष्णव क्या होता है, जरा हम भी तो सुनने जान ले, हम भी जाएं वैष्णव के बीच में, बहुत कुछ हमने पढ़ा है सुना है इनकी कविताएं। फिर वो एक कविता लिखते हैं, वैष्णव हवार मोने छिलो शाद त्रिनाद अपि श्लोक सुने पड़े गेलो बाद। बोलते हैं बहुत समय से हमको इच्छा थी कि हम वैष्णव बने, क्यों सुना था वैष्णव वैष्णव कुछ है, लेकिन फिर हमने ये त्रिनाद अपि सुनी चिन्ह श्लोक सुना तो सोचा भूल जाओ तुम वैष्णव, हम वैष्णव नहीं बन सकते बाबा, एक तीन सभी अधिक नम्र बनो, सहनशील बनो, ये हमारे बस की बात नहीं, छोड़ो वैष्णवता के सपने छोड़ दो। तो वैष्णव तो बहुत ऊंची चीज है, हम लोग तो ट्रेनिंग ले रहे हैं वैष्णव बनने के लिए, अभी तो बहुत समय है आगे, इसलिए वैष्णवों के बीच में अगर मतभेद हो भी, हो नहीं है ये तो होगा ही, क्योंकि आखिर ये दुनिया में हम करते हैं बहुत कुछ चीजें करते हैं, सब अलग अलग, सबका व्यक्तित्व अलग है, सबके विचार अलग हैं, लेकिन एक विचार से सब लोग बंधे हुए हैं, और वो क्या है? कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा। तो ये एक हमारा सीमेंट है, हमको जोड़ के रखता है, इसलिए बीच में कुछ जैसे दीवार के ऊपर कुछ क्रैक भी आ जाए तो उसके ऊपर सीमेंट लगाए उसको खत्म कर देते हैं, तो कृष्ण प्रेम जो है वही हमारे बीच में सीमेंट है, उसमें थोड़ा क्रैक पड़ गया, क्या करें, और सीमेंट डालो और कृष्ण प्रेम डालो उसके ऊपर, खत्म हो जाएगा। एक बार आपको पहले बताया भी था शायद, एक संत ने कहा है कि हमारे साथ जो कोई अगर बुरा करता है उसको सदैव भूलना चाहिए, और हम जो दूसरों के प्रति अच्छा करते हैं वो भी सदैव भूलना चाहिए। दूसरों ने हमारे प्रति जो अच्छा किया है उसको सदैव याद रखना चाहिए, और हमने जो दूसरे के प्रति कोई बुरा किया है उसको भी सदा याद रखना चाहिए। देखो मैं इतना दुष्ट हूं, वो बेचारे उसके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, मैंने केवल उसके दुर्गुण देखे और मैंने उसको ऐसे ऐसे उस दिन कहा, मैं तो बेकार व्यक्ति हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये सब हमारे आदर्श हैं, भले हम इसको पूरी तरह से पालन कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन चेष्टा तो होनी चाहिए। ये हमारा आदर्श है, इसको पहुंचना है इस स्तर तक हमको। तो ऐसे चीज ऐसे करने से वैष्णव के बीच में प्रेम रह पाएगा, बन पाएगा। इसके लिए प्रयास करना है, कोई भी चीज बैठे बैठे नहीं होता, कष्ट लेना पड़ता है वैष्णव के पीछे प्रेम बनाए रखने के लिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, नहीं। अगर अर्जुन बोलते ऑटोमेटिक सब युद्ध जीत जाएंगे, कृष्ण हैं, नहीं होता। कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे कि तुम एक जगह बैठ जाओ और युद्ध हो जाएगा, नहीं, तुम भी युद्ध करो। उसी प्रकार से कृष्ण चाहते हैं कि वैष्णव भी सारे प्रेम से आपस में रहें। तो इसके लिए हम सबको अपनी अपनी ओर से प्रयत्न करना है, ऐसे नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे और ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सबको परिश्रम करना चाहिए इसके बारे में, फिर वो संभव होगा, ठीक है ना। तो चलो अभी सबको रथ यात्रा के लिए सेवा करना है, 9:30 तो बज गए, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।